नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह को संबोधित किया, नागरिक केंद्रित प्रशासनिक मॉडल की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर 30 जून तक 40 महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क से छूट दी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में ग्राम पंचायत और निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किए। और प्रदेश में कई स्थानों पर मौसम में अचानक बदलाव से आंधी बारिश, कहीं कहीं ओले भी गिरे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तेजी से बदलती आकांक्षाओं के लिए एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल की आवश्यकता है जो कुशलता के साथ साथ नागरिक केंद्रित भी हो। उन्होंने कर्मयोगी साधना सप्ताह को संबोधित करते हुए आज एक वीडियो संदेश में ये बात कही। वर्तमान शासन को नागरिक देवो भव के मंत्र से निर्देशित बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसका स्पष्ट उद्देश्य सार्वजनिक सेवा को अधिक सक्षम, संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
आज गवर्नेंस के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव। इस मंत्र में समाहित भावना के साथ आज पब्लिक सर्विस को ज्यादा कैपेबल, नागरिकों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाने पर फोकस किया जा रहा है। अब शासन को सिटीजन सेंट्रिक बनाकर एक नई पहचान दी जा रही है।
केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष और उसके कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच 30 जून तक 40 महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में छूट दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये निर्णय घरेलू उद्योगों में आवश्यक पेट्रोकेमिकल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रूप से लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इससे संबंधित क्षेत्रों पर लागत का दबाव कम होगा और आपूर्ति में स्थिरता आएगी, इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि कुल 40 वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए प्री पेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विकल्प चुनते हैं तो इससे न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि राज्यों और बिजली कंपनियों को भी लाभ होगा।
स्मार्ट मीटर के कारण से जो वहां गड़बड़े होती थी उसे रोकने के कारण से पहली बार गया है जिसमें 2600 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है सभी 49 कंपनियों को मिला करके। हम तो गाइडलाइन देते हैं, राज्य की सरकारों का काम है, लेकिन राज्य की सरकारें इसको लगाएं, ये हमारा आग्रह भी रहता है और उस आग्रह के कारण से इन कंपनियों का हमको भी चिंता है ताकि सारे देश में बिजली ठीक से बने और ज्यादा ज्यादा प्लांट जनरेशन हो और उनको पेमेंट कर सके, घाटा खत्म हो।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी परियोजनाओं में आधुनिक तकनीक और डिजिटल मैपिंग को बढ़ावा देने के संबंध में आज जयपुर में महत्वपूर्ण बैठक ली। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान यानी बाईसैग एन के माध्यम से सरकारी कामकाज में अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने माई भारत पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में संचालित गतिविधियों की समीक्षा ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की युवा शक्ति के कल्याण और उन्हें सशक्त बनाने के लिए इस पोर्टल के तहत अधिक से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने आज डीग में एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत नवनिर्मित मार्बल मूर्ति प्रदर्शनी स्थल का लोकार्पण किया। इससे स्थानीय शिल्पकारों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक मंच मिलेगा। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार प्रतिभाशाली शिल्पकारों के कौशल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में ग्राम पंचायत और निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति शुभा मेहता की खंडपीठ ने राज्य के निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और निर्वाचन विभाग के सचिव राजेश वर्मा से 4 सप्ताह में इसका जवाब मांगा है। अदालत ने ये आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में दलील दी गई कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद चुनाव आयोग की मौजूदा तैयारी के अनुसार 15 अप्रैल तक चुनाव होना संभव नहीं है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखते हुए अदालत को सूचित किया कि सरकार चुनाव की इस समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर रही है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी व्यावहारिक परिस्थितियों का हवाला दिया। प्रदेश में किसानों को खरीफ बुवाई के दौरान गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि अभियान के तहत खाद और उर्वरक वितरण को सुव्यवस्थित किया जा रहा है, साथ ही विशेष रूप से अनुदानित यूरिया के गैर कृषि और औद्योगिक उपयोग पर सख्ती से रोक लगाने के लिए व्यापक निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 2 दिन पहले खत्म हुए वित्तीय वर्ष में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीते वित्तीय वर्ष में 18.5 करोड़ यात्रियों ने सफर किया, जो कि पिछले साल की तुलना में करीब 5.5% ज्यादा है। उन्होंने बताया कि 8,622 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 7.5% अधिक है। श्री अमिताभ ने बताया कि यात्री सुविधाओं में भी बेहतरीन काम हुआ है। पिछले 2 सालों में करीब 100 हाई लेवल स्टेशन बनाने का काम पूरा हुआ और अभी 50 से ज्यादा हाई लेवल स्टेशन बनाने का काम चल रहा है।
उत्तर पश्चिम रेलवे की अगुवाई में एसी कोचेस में ब्लैंकेट कवर्स देने का कार्य शुरू किया गया। उसके बाद जोधपुर दिल्ली के बीच गाड़ी जो चलती है उसके एसी कोचेस में ब्लैंकेट कवर्स देने का कार्य शुरू किया गया। 6.5 लाख से भी ज्यादा ब्लैंकेट कवर्स की खरीद का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इश्यू कर दिया गया है और कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड विद ऑटोमेटिक ट्रेन अनाउंसमेंट करीब 47 स्टेशनों पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड इनको लगाया गया है। ये और आने वाले 6 से 8 महीने में लगभग 100 और स्टेशन पर भी कोच गाइडेंस सिस्टम को लगाया जाएगा।
राज्य के खनिज विभाग ने इतिहास में पहली बार 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व का आंकड़ा पार कर नया रिकॉर्ड बनाया है। विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 13% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ 10,394 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व जुटाया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि ये पिछले साल की तुलना में 1,163 करोड़ रुपए अधिक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संदेश नायक ने आज जयपुर के कलेक्टर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नायक ने कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर उतारना और पारदर्शी प्रशासन देना उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी।
मुख्यमंत्री विकसित ग्राम और शेयर्ड वार्ड अभियान भी चल रहा है, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। जो विकसित राजस्थान के लक्ष्य जो हमने लगा के रखे हैं वार्ड हो, ग्राम पंचायत हो, रूरल शहर हो, उसके ऊपर दोनों पे फोकस रहेगा, समस्या का निराकरण हो और नवाचार जो पहले चल रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, रूटीन काम जो है वो समयबद्ध से पारदर्शी रूप से हो जाए। जो भी पहले जो चल रहे रास्ता खोल अभियान अपने आप में अच्छी पहले वो सभी को मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं जो उसमें जो इश्यूज मूल जो समस्या है वो यही होता है कि रास्ते के ऊपर वो सभी जो अभियान है जो चलते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू करके सकते।
उधर सलूम्बर में नए जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने भी आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पद संभालने के बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर मौसम में अचानक आए बदलाव से आंधी के साथ बारिश हुई। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण श्रीगंगानगर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ सहित पश्चिमी राजस्थान के जिलों में मेघ गर्जना के साथ बौछारें पड़ी। श्रीगंगानगर के कुछ गांवों में ओलावृष्टि की भी सूचना है। इस मौसमी बदलाव से जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में पककर तैयार खड़ी फसलों और मंडियों में रखे अनाज को नुकसान पहुंचने की आशंका है। जालौर, पाली और बाड़मेर में भी दोपहर बाद तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। विभाग ने आगामी घंटों में जोधपुर और बीकानेर संभाग में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।
दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में यानी कोटा, उदयपुर संभाग में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। कल 3 अप्रैल को भी इस सिस्टम का सर्वाधिक असर राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगा। इस दौरान उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के जिलों में भी तेज मेघ गर्जन, कहीं कहीं तेज हवाएं और हल्की मध्यम बारिश के रूप में जारी रहेगा। तो एक और पश्चिमी विक्षोभ 7 और 8 अप्रैल को शुरू होगा। आंधी बारिश की गतिविधियां फिलहाल अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के अलग अलग भागों में जारी रहेगी। वहीं तापमान भी अधिकांश भागों में 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह को संबोधित किया। नागरिक केंद्रित प्रशासनिक मॉडल की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर 30 जून तक 40 महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क से छूट दी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में ग्राम पंचायत और निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किए। और प्रदेश में कई स्थानों पर मौसम में अचानक बदलाव से आंधी बारिश, कहीं कहीं ओले भी गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।